क्या पानी पाक करता है? आप किससे पाकी हासिल करते हैं? पानी से। कुरान की सिफत व युज़क्की हिम, कुरान पाक करता है उन दिलों को जो दिल इसके सामने आकर बैठ जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने खूबसूरती के साथ यहाँ पर बता दिया कि अल्लाह का कलाम तुम्हें बहुत से स्पिरिचुअल ट्रूथ्स के बारे में बता रहा है। लियाकुलू मिन समरीही को अगर आप फलों के एंगल में पानी से रिलेट करें, वमा अमिलत हु आईदीहिम, तो इसमें स्कॉलर्स कहते हैं कि इंसान के लिए अल्लाह ने कहा कि पानी भी तुमने अपने हाथों से नहीं निकाला। इंसान डिग कर सकता है, खोद सकता है, इंसान मशीनों से ड्रिल करके जमीन के अंदर जा सकता है, मगर अगर अल्लाह ना चाहे तो मीठा पानी नहीं निकलता। कराची में कितनी कोशिश की जाती है बोरिंग करा के मीठा पानी निकालने की। जब अल्लाह का हुक्म नहीं होता तो आप 70 फुट भी चले जाएं, आप 2000 10000 फुट भी चले जाएं, नहीं निकलता मीठा पानी। तो अल्लाह ने कह दिया ये अल्लाह के कंट्रोल में है, बिल्कुल जैसे वही तंजील सिर्फ अल्लाह के कंट्रोल में है। क्या आया था शुरू में? तंजील अल अजीज रहीम। सिर्फ अल अजीज अर रहीम इस तंजील को पॉसिबल कर सकता है, वही सिर्फ अल्लाह की तरफ से हो सकती है। तो आपको बहुत खूबसूरती से आयात यहाँ पर पिछली आयात के साथ टाइड नजर आ रही हैं, और अल्लाह ने वाजे कर दिया कि अल्लाह ताला जिंदगी में इंशाल्लाह इस वही और कुरान के जरिए इंसानों के मुर्दा दिलों को जिंदा कर सकता है। इसी चीज को अपने लिए समझें, और जब तक जिंदा हैं, जब तक जिंदा हैं, अपने अमल के लिए भी पुरउम्मीद रहिए और अपनी औलादों के अमल के लिए भी पुरउम्मीद रहिए। अल्लाह मुर्दा ज़मीन को बारिश से ज़िंदा कर देता है, अल्लाह बेअमल औलादों को कुरान की बारिश से ज़िंदा कर सकता है। हमारे बच्चे गलत नहीं हैं, हमारे बच्चे काफिर नहीं हैं, हमारे बच्चे बुरे नहीं हैं, हमारे बच्चे गाफिल हो गए हैं, हमारे बच्चे माहौल के असरात के अंदर दीन से दूर हो गए हैं। आपका और मेरा काम है कुरान की बारिश बरसाते रहें और उनको इसके करीब लाते रहें, यही चीज यहां पर बताई जा रही है। अब आप देखें, जब आप इस एंगल से कुरान की आयात पढ़ती हैं और आपको बजाहिर नजर आता है कि चश्मों की बात है, फलों की बात है, अल्लाह ने कहा फल तुमने अपने हाथ से नहीं उगाए, लेकिन जब आप तदब्बुर के साथ पढ़ती हैं तो क्या आपको कुरान की गहराई के मफहूम दिल में जाते हुए महसूस होते हैं? ये तदब्बुर, ये एक्सप्लेनेशन आपको अपनी औलादों को भी बताने की जरूरत है वक्तन फवक्तन। उसका तरीका यही है, उनको क्लासेस का हिस्सा बना दीजिए। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के बच्चों के टाइम स्केड्यूल से मैच करती हुई क्लासेस होती हैं। आपके बच्चे की जो भी एज है, एटलीस्ट वंस अ वीक, और अगर वंस अ वीक पॉसिबल नहीं है तो कम से कम वंस अ मंथ मिनिमम उसको कुरान सुनना चाहिए। अगर नहीं सुनेगा तो फिर इन सारे तदब्बुर के खजानों से महरूम रह जाएगा। तो अल्लाह ने कहा जो महरूम रह जाएगा उसके लिए तो ट्रेजेडी है। अफला यशकुरून, क्या तुम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करोगे? इस कुरान के इस मफहूम को समझ के क्या तुम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करोगे? अपने जिंदगी में नेमतों को देख कर क्या तुम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करोगे? मुसलमान पैदा होना, क्या तुम अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करोगे? कुरान सुनने के लिए कुरान के सामने आकर बैठ जाना, क्या तुम अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करोगे? कुरान के लिए रमजान में वक्त निकाल लेना, क्या तुम अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करोगे? तो इस खूबसूरती से अल्लाह ताला ने यहाँ पर शुक्र को फल और शुक्र को कुरान के साथ टाई किया है। जो कुरान की कदर करने वाले होते हैं वो कुरान के मिलने पर कांस्टेंट अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आप सूरह बकरा में वाहिद मुकाम आता है जहां पर रोजों का जिक्र आता है, और वहां पर आप देखें इसी शुक्र को इस किताब के साथ टाई किया गया है। सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में आता है, शाहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान वलित, और फिर बीच में मैं गैप देके बोल रही हूँ, आयत बहुत लंबी है, वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। रमजान तो कांस्टेंट शुक्र का महीना है, जब इफ्तार करें तो भी शुक्र करें, जब ठंडा पानी पिएं तो भी शुक्र करें, और ये जो रमजान में कुरान से जुड़ने की नेमत मिल जाती है इस पर भी शुक्र करें। तो अल्लाह ताला ने इसी खूबसूरती से आयत नंबर 35 में पानी, कुरान, फल और इन सब चीजों को कनेक्ट कर दिया है। आगे आयत नंबर 36 में एक और आपको आयतुल कौन का इम्पैक्ट नजर आ रहा है। अल्लाह ताला एक और एंगल से अपनी कायनात पर गौर व फिक्र करने की तरफ इंसानों को दावत दे रहे हैं। آیت نمبر 36، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج کلہا، جس نے ہر طرح کے جوڑے بنائے، مما تنبت الارض، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو زمین سے نکلتے ہیں، ومن انفسہم، اور کچھ ان کے اپنے نفسوں کے اندر ہیں، ومما لا یعلمون، اور ان میں سے بھی جن کو یہ نہیں جانتے. یہاں آیا ہے، آج شروع ہو رہی ہے سبحانہ. سبحانہ ایسی ہستی کے لیے آتا ہے جو ہر طرح کے شارٹ کمنگ، فلا، ایپ سے پاک ہو، جس کو کوئی محتاجی نہ ہو، اس کو سبحان کہتے ہیں. کتنا پرفیکٹ ہے اللہ، جس نے ہر طرح کے پیئر بنائے، جوڑے بنائے. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاک ہے اللہ. سو کس چیز سے پاک ہے اللہ؟ ہر طرح کی محتاجی سے، ہر طرح کی کمزوری سے پاک ہے اللہ. جتنا سوچ سمجھ کے پڑھیں گے، اتنا انشاءاللہ آپ کا اللہ کے اوپر ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا. سبحانہ سبحا یا سبحا سے ہے، سین با ہا. سبحا ہوتا ہے کسی چیز کا فلوٹ کرنا، تیرنا. اور یاد رکھیں، جب کوئی چیز تیرتی ہے تو وہ اپنا لیول مینٹینڈ رکھتی ہے. جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، یا جب بھی آپ اللہ کے بارے میں کوئی بھی گفتگو کرتے ہیں، تو آپ کو اکرام اور تعظیم کا لیول مینٹین کرنا ہوتا ہے. آپ اللہ سے ویسے ہی نہیں بات کر سکتی جیسے کہ آپ اپنے جیسے انسانوں سے بات کرتے ہیں. اللہ کو سبحان اللہ کہنا، اللہ کو سبحان سمجھنا، اللہ کی تکریم اور اللہ کی تعظیم کے لیول کو مینٹین کرنے کی بات ہے. اس کے مقام کو پہچانو. اپنے اللہ کو ڈاکٹر کہتے کہتے، جیسے بعض اسکالرس تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ اللہ کو ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے. آپ اللہ کو، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا ڈاکٹر اللہ ہے، وہ کہتے ہیں احتیاط رکھنی چاہیے، اللہ کو ڈاکٹر مت کہیے. بعض اوقات لوگ محبت میں کہتے ہیں اللہ میرا دوست ہے، لیکن جیسے آپ اپنے دوست کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جیسے اپنے دوست کو آپ دوست سنا دیتے ہیں، یقیناً آپ اللہ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. تو اگر آپ ٹرمینالوجی وہی استعمال کر رہے ہیں جو آپ انسانوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، تو پھر آپ کو عزت اور تکریم کا اور تعظیم کا معاملہ بہت کیئرفل سائڈ پر رکھنا چاہیے، ورنہ انسان جو ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے. تو اللہ وہ پاک ہستی ہے، اور یہ اس ایک کائنات کی نشانی کے سامنے سبحان اللہ یا سبحان الذی پہلے لانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے جوڑے بنائے. ہر چیز کے نہیں، یہ امپیکٹ دیکھیں یہاں مل رہا ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے جوڑے بنائے. دس از دا رائٹ ٹرانسلیشن، اللہ نے ہر طرح کے جوڑے بنائے ہیں. سو اللہ نے یہاں کیوں کہا اس کے شروع میں سبحان الذی؟ اس لیے کہ صرف اللہ ایسی ذات ہے جس کو جوڑے کی ضرورت نہیں ہے. جوڑا کیا ہوتا ہے؟ جو کمپلیمنٹری ہوتا ہے، ایک دوسرے کا اپوزٹ اور کمپلیمنٹری، جس کے بغیر پہلا پارٹ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. دو ایسے کسی چیز کے حصے جس سے پہلا پارٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا. سو جو پیئر ہوتا ہے، جو زوج ہوتا ہے عربی زبان میں، وہ ہوتا ہے اپوزٹ اینڈ کمپلیمنٹری، جس کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور جو اپوزٹ بھی ہوتا ہے. یہ آپ کو خوبصورتی یہاں پر نظر آئے گی. اور اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے ہر طرح کا جوڑا بنایا، جیسے دن کا جوڑا رات ہے، صبح کا جوڑا شام ہے، اسی طرح اللہ نے دنیا کا فلورا اور فونا بنایا ہے. آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ. سو اٹامک ورلڈ میں آپ کو پازیٹیو اور نیگیٹو چارج ملتا ہے، آپ کو اسی طرح سے پروٹونز اور نیوٹرونز ملتے ہیں. یہ سب چیزیں آپ کو پیئر کے اندر ملتی ہیں. ان میں کیا بنایا اللہ نے؟ ان میں اپوزٹ، ایک دوسرے کے اپوزٹ اور کمپلیمنٹری ملتے ہیں. دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت. دنیا عارضی ہے اور آخرت پرماننٹ ہے. ابھی ہم نے بات کی تھی، دنیا میں آپ کو کچھ غم کچھ خوشی ملتی ہے، آخرت کیسا جوڑا ہے؟ آخرت میں کچھ لوگوں کے لیے کمپلیٹ خوشی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے کمپلیٹ غم ہے. سو دس از دا کمبینیشن آف دنیا اور آخرت. تو اللہ نے کہا ہے کہ اپوزٹ کے تھرو، آپ اگر یہ اصول نکالتے ہیں قرآن سے اور اکیڈیمیا سے، کہ چیزوں کے اپوزٹ کے تھرو آپ ان کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں. جیسے اگر دن نہ آتا کبھی بھی، تو ہمیں کبھی بھی رات کی اہمیت کا اندازہ نہ ہوتا، یا اگر سورج ہوتا ہی نہ تو ہمیں چاند کی اہمیت کا اندازہ نہ ہوتا. تو چیزوں کا اپوزٹ ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کی اہمیت کو واضح کرتا ہے. बिल्कुल, जैसे अल्लाह ताला ने इंसानों में जोड़े बनाए हैं, अल्लाह ने इंसानों में पेयर बनाए, हर चीज का पेयर है, लेकिन अल्लाह को पेयर की जरूरत नहीं है। ये वो आयत है, वन ऑफ द आया ऑफ द कुरान, जिसमें बहुत से साइंटिफिक फैक्ट्स एम्बेडेड हैं। मैं बहुत साइंटिफिक फैक्ट्स पर यहां बात नहीं कर सकती हूं, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर जरूर कर लीजिए। बाज़ों का बाज़ लोग कुरान की हर आयत को साइंस से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, या साइंस से उसकी इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करते हैं। कुरान में साइंस है, नो डाउट, और कुरान में ऐसी साइंस है कि जिसको अब तक दुनिया के सामने एक्सप्लोर भी नहीं किया गया है। अब तक ऐसे दिमाग मुकम्मल नहीं आए कि जो कि इसकी सारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर दें। आप देखें, आदम अलैहि सलाम से जो जीन्स अब तक के इंसानों में चली आ रही हैं, वो वहां का इल्म था, अल्लमा आदम अल अस्मा अकुल्लहा, वो वहां का इल्म था, जो आहिस्ता आहिस्ता कोई जीन किसी में ट्रांसफर हुई, कोई जीन किसी में ट्रांसफर हुई, तो किसी साइंटिस्ट ने कुछ इन्वेंट किया, किसी साइंटिस्ट ने कुछ इन्वेंट किया। ये कॉन्स्टेंट चल रहा है और ये रहती दुनिया तक चलता रहेगा। कुरान में साइंस है, लेकिन कोई ये कह सकता है कि कुरान साइंस की किताब है? कुरान साइंस की किताब नहीं है। तो हर आयत को साइंस से इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश ना करें, इसलिए कि देखें, साइंस की थ्योरी ऑब्सोलीट हो जाती है, कुरान ऑब्सोलीट नहीं हो सकता। साइंस की थ्योरी जो है, आप उससे इत्तफाक नहीं कर सकते हैं। मुसलमान होते हुए आप कुरान के लिए नहीं कह सकते कि मैं कुरान के इस हुक्म से इत्तफाक नहीं करते। तो कुरान में साइंटिफिक मिरेकल्स हैं, लेकिन अल्लाह ने इसको साइंस की किताब नहीं बनाया। क्या सारे इंसान साइंटिफिक माइंड के होते हैं, सब साइंस पढ़ते हैं? बास लोग बिल्कुल साइंस की बात को नहीं समझते हैं। और कुरान किसके लिए आया है? हुदल लिन नास, आम इंसान के लिए आया है। लेकिन इसकी जुबान और कलाम इतना पावरफुल है कि जैसे ये आम इंसान के दिल को अपील करता है, बिल्कुल इसी तरह ये साइंटिस्ट की इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन को भी फायदा देता है। इसमें इतना ही इल्म मौजूद है। सो कुरान से जो हिदायत लेना चाहेगा, उसके लिए क्या है? वलकद यसरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दक्किर। अगर आपने ज़िक्रा के लिए कुरान पढ़ना है, नसीहत के लिए कुरान पढ़ना है, वसीयत के लिए कुरान पढ़ना है, रिमाइंडर के लिए कुरान पढ़ना है, तो कुरान बहुत आसान है। जो आपने कुरान की आयात में से साइंटिफिक फैक्ट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, उसमें फिर आपको वक्त लगाना पड़ता है, उसमें आपको सोचना पड़ता है, उसमें आपको फिर उस चीज को समझना होता है। लेकिन ये कभी भी मत समझें कि मैं कुरान की हर चीज को साइंस से प्रूफ कर सकती हूं। मिसाल के तौर पे कुरान कहता है कुछ लोगों के दिल इतने सख्त हैं जैसे पत्थर। आप इंसानों की सर्जरी करते हैं तो अब वहां दिल नहीं धड़क रहा, पत्थर धड़क रहा, पत्थर तो धड़क ही नहीं सकता। कुरान कह रहा है बाज, और फिर कुरान ने मिसाल भी बता दी, हिदायत से दूर लोग उनके दिल पत्थरों की तरह हैं। पत्थर पे पानी पड़ता रहता है, कोई असर नहीं होता, स्लिप कर जाता है। बाज लोग ऐसे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप सर्जरी करेंगे तो अंदर से धड़कता हुआ, पंप करता हुआ दिल नहीं निकलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ऐसा है कि हर चीज को साइंस से हम नहीं प्रूफ कर सकते। कुरान में स्पिरिचुअल साइंस भी तो है। स्पिरिचुअल साइंस को आप वर्ल्डली साइंस से तो प्रूफ नहीं कर सकते। इवन हम अपनी जुबान में नहीं बोलते फलां तो बड़ी पत्थर दिल की हैं, हम मुहावरे नहीं इस्तेमाल करते। कभी किसी मुहावरे को आप साइंटिफिकली प्रूफ कर सकते हैं? मुहावरे साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हो सकते। कितना कॉमन खवातीन शोहरों से कहती हैं, आपने तो मेरा दिल तोड़ दिया। तो क्या सचमुच दिल टूट गया आपको? खुदा ना खास्ता दिल टूट गया तो आप ये कहने के काबिल थोड़ी होंगे मेरा दिल तोड़ दिया। बस लोग कहते हैं ऐसी बात बोली, मेरा दिल जला के रख दिया, मैं तो आग बगोला हो गई। अगर आप आग बगोला हो गई होती तो आप बर्न्स वार्ड में होते, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह महफूज रखे, जहां पर विक्टिम होते बेचारे सारे जले हुए। आग बगोला आप हो गई, ये क्या है? ये मुहावरे हैं। सो इसी तरह से कुरान में बहुत से मुहावरे हैं। जब मुसलमानों ने बहुत पढ़ लिख लिया और अपनी वही की आंख को बंद कर दिया, तो उन्होंने बहुत से कुरान की आयतों में प्रॉब्लम निकाला, बिल्कुल जैसे ओरिएंटलिस्ट ने निकाला, और उन्होंने कहा कि देखें, ये वाली कुरान की आयत ये तो साइंस के मुताबिक आती नहीं है। सो इसका मतलब है कि इसमें कुछ मसला है। कुरान साइंस की किताब नहीं है, और आप कुरान की हर आयत के अंदर से साइंस के मुताबिक बात नहीं निकाल सकते। जितनी समझ आती है उतनी समझ आए, लेकिन हम बाय प्रोडक्ट हैं, दुनिया बाय प्रोडक्ट है उस दौर की जिसके अंदर एक साइंटिफिक रेनेसांस आया था। जब आपको बताया था यूरोपियन रेनेसांस 17 सेंचुरी में जब आया था, जब साइंस को खुदा की पोजीशन दे दी गई थी कि जो साइंस कहेगी वो रखा जाएगा और जो दीन कहेगा उसको चर्च की चार दीवारी तक महदूद रखा जाएगा. हम मुसलमान भी साइंस से इतना ज्यादा इम्प्रेस हैं कि जब कोई चीज साइंस बता देती है तो हम फौरन समझ जाते हैं. जब तक हदीस बता रही होती है तो हम कहते हैं हाँ हाँ ठीक है हदीस में है, और भी बहुत सी चीजें जिस पर हमें अमल करना चाहिए. जब साइंस ने बता दिया कि आपके लिए जो है वो कांस्टेंट वुजू में कितने फायदे होते हैं, तो बाज लोग कहते हैं हम तो अच्छा वुजू करते हैं इसलिए हैं, हाइजीन बड़ी अच्छी रहती है इसमें, जितने भी आपके नाक में जर्म्स होते हैं वो सब निकल जाते हैं, तो आपका साइनस का इशू नहीं होता. आप और मैं इसलिए नमाज पढ़ते हैं कि हमें साइनस का इशू ना हो, या कोई और हायर आपका और मेरा टारगेट होता है. हम अल्लाह की रजा के लिए नमाज पढ़ते हैं. इसीलिए आपको बताया था कि रसूल इसलिए नहीं आते थे माशरों में कि वो उनकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा जो है वो हाई स्टैंडर्ड पर ले जाएं. रसूल आते थे जिंदगी का मकसद देने के लिए, और जब जिंदगी का मकसद लेने के बाद दुनिया के फायदे के काम किए जाते हैं तो वो खुद ब खुद अपने अलाइनमेंट में आते जाते हैं. यही चीज यहां पर भी आपको मिल रही है कि साइंस की जुबान को इतना ज्यादा आगे मत लेकर जाएं, कुरान की बात को समझें, और कुरान ने हर इंसान को समझने के लिए आयात दी हैं. अल्लाह ना करे कि कभी हम कुरान का इनकार करने वाले हों. कुरान ने ذوالقرنین की कहानी बताई सूरह कहफ में, वहां आता है कि ذوالقرنین ऐसे मुकाम पर पहुंचा जहां पर सूरज गदले पानी में मडी वाटर में गुरूब हो रहा था. इज इट अ साइंटिफिक फिनोमेना? ये क्या साइंस की जुबान में कुरान बात कर रहा है? सूरज गुरूब होता है, सूरज कहीं डूबता है, आप जाती हैं सी व्यू, और बहुत बच्चों को शौक होता है कि सनसेट से पहले पहले लेकर जाए वो मुझे फोटोग्राफी करनी है, तो आप जाती हैं और सूरज जो है वो पानी में जा रहा है, आप कहती हैं कितना प्यारा सीन है ना पानी में जाते हुए सूरज का, आपके बराबर में खातून खड़ी हैं, आप कहें जरा भी साइंटिफिक सेंस नहीं है आपको, आपको नहीं पता सूरज पानी में नहीं जा सकता, आप कहें सारे सीन का सत्यानाश कर दिया, सारी पिक्चर जो थी उसको बेकार कर दिया बिल्कुल ही. तो साइंस की बात हमेशा कुरान नहीं कर रहा होता. हाँ, बहुत सी बातों में कुरान की साइंस मौजूद है. तो मुसलमानों का काम क्या है कि अक्ल को इस्तेमाल करें और कुरान की खूबसूरती को सामने लेकर आएं. यहां पर आया है खलकल अजवाजा कुल्लहा, उसने हर तरह के जोड़े बनाए. देखें यहां एक और अंदाज में बात आ सकती थी अरबी जुबान में, खलका कुल्लहा जौजन, उसने हर एक के लिए जोड़ा बनाया. इसका तर्जुमा यह होता अल्लाह ने हर चीज के लिए जोड़ा बनाया, लेकिन अल्लाह ने यह नहीं कहा यहां पे. अल्लाह ताला ने कहा है खलक अल अजवाजा कुल्ला, अल्लाह ने हर तरह के जोड़े बनाए. तो इसका मतलब है कि अब इतनी तरह के जोड़े हैं कि आप और मैं साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ भी सकते हैं, और हो सकता है आने वाले 20-30 साल में कुछ और हमारे सामने जो है वाजे हों. यहां आया है कुल्ला, हर तरह के जोड़े. याद रखें एक मैं कहती हूं, कुल मैं कह रही हूं, मैंने कुल की कुल बात आपसे कह दी, इसमें कहीं कोई कमी हो सकती है? जब मैं कहूं मैंने कुल की कुल बात आपसे कह दी, मैं इंसान हूं ना, मैं कह रही हूं मैंने कुल का मतलब ऑलमोस्ट सारी तमाम. मैं कहूं मैंने कुल बात आपसे कह दी, टोटल बात आपसे कह दी, तो क्या फिर भी इसमें गलती कमी के चांसेस हैं? एब्सोल्युटली बिल्कुल हैं. आप कहती हैं अपने हस्बैंड से सब कुछ तो करती हूं मैं आपके लिए, कुल काम मैं ही करती हूं आपके लिए, आपके हस्बैंड कहें दोबारा सोच लो, कुल काम मेरे तुम करती हो या कोई काम रह जाता है? वो कपड़े इस्त्री करने वाली तो मासी आती है, धोने वाली तो दूसरी आती है, किचन के बर्तन तो वो धोती है, रोटी पकाने वाली एक और आती है, तो कुल काम तुम कैसे करती हो? कहे हाँ हाँ मेरा मतलब ये था कि जो मैं करती हूँ वो कुल करती हूँ. तो जब इंसान कहता है कि कुल काम मैंने किया, उसमें कमी होती है. जब अल्लाह कह रहा है खलकल अजवाजा कुल्लहा, अल्लाह ने हर तरह के जोड़े बनाए, तो जो आपको आज साइंस से समझ आता है वो भी, और जो अभी साइंस प्रूफ नहीं कर सकी वो भी जोड़े इसके अंदर आ जाते हैं. अल्लाह ने हर तरह की मखलूकात बनाई हैं, ये अल्लाह का उसलूब है. जब अल्लाह कुल का इस्तेमाल करता है तो इसमें अल्लाह ने हर चीज को लपेट लिया. यानी अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे इल्म में नहीं है, जैसे सिर्फ मर्द औरत जोड़ा नहीं होता है, मर्द औरत जोड़ा है लेकिन ग्रुप्स भी आपस में जोड़े होते हैं. कुरान में सूरह वाकया में आता है आयत नंबर 7 में, कुंतुम अजवाजन सलासा, कयामत के दिन तुम तीन ग्रुप्स में बट जाओगे. तो ये कौन से जौज हैं? इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने जो कहा है कि अल्लाह ने हर तरह के जोड़े बनाए, सो इसमें बड़ी वैरायटी है. सिर्फ वो वैरायटी हमारे दिमाग में ना आए, सुबह का जोड़ा शाम, रात का जोड़ा दिन, सूरज का जोड़ा चांद, दुनिया का जोड़ा आखरत, मर्द का जोड़ा औरत, सिर्फ ये ना आए बल्कि और आपको इसके अंदर मखलूकात की वैरायटी मिले, वो जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. जैसे बहुत से वो मुफस्सरीन जो कि साइंटिफिक फील्ड से इम्प्रेस होकर बात करते रहे, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की. उन्होंने कहा इकोसिस्टम जो आपका होता है, इकोसिस्टम जो आपका होता है, इस इकोसिस्टम में बहुत सी चीजें एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, जोड़े होते हैं. आप देखती हैं जहां पर फार्म हाउसेज होते हैं, मिसाल के तौर पर कोई बाग है आम का फार्म हाउस, जिस जगह पर आम के दरख्त होते हैं एक सर्टन तरह का छोटा पौधा होता है जो उसी छांव में प्रोड्यूस होता है. आपने देखा होगा वो छोटा पौधा हमेशा एक सर्टन एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस होगा, वो आम के दरख्त जहां लगे होंगे उसी की शेड में, उसी से न्यूट्रिएंट्स लेकर प्रोड्यूस हो जाता है, खुद ब खुद निकल आता है. ये उसका एक जोड़ा बन गया आम के दरख्त के साथ. बास परिंदे स्पेसिफिक दरख्तों के ऊपर आते हैं, सब दरख्तों पर नहीं आते. बास बटरफ्लाइज स्पेसिफिक फूलों पर आती हैं, सब पर नहीं आती. हनी बी सिलेक्टेड फ्लावर्स पर नेक्टर लेती है, सब पर नहीं लेती. तो जब अल्लाह ताला ने ये कहा कि अल्लाह ने हर तरह के जोड़े बनाए, तो ये सब चीजें उसके अंदर आ जाती हैं. जब अल्लाह ने कहा मिम्मा तुम भी तुल अर्थ, उसमें से जोड़े ऐसे भी हैं जो जमीन उगाती है, तो इसमें ये आ जाते हैं कि जैसे दो तरह के आम भी हो सकते हैं. आम कितनी तरह के हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में कितनी वेराइटी है. खजूर कितनी तरह के हैं, कितनी वेराइटी है. ऑरेंजेस कितनी तरह के हैं, अमरूद कितनी तरह के हैं. तो मिम्मा तुम भी तुल अर्थ में ये भी आता है कि एक ही कैटेगरी के फल लेकिन उसमें वैरायटी, उसमें पेयर. उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया मिम्ब तुम बितुल अर्थ के अंदर बास परिंदों का स्पेसिफिक प्लांट्स के ऊपर आना भी आता है, और बास छोटे प्लांट्स का अंडर शेड ऑफ द बिगर प्लांट्स ग्रो कर जाना भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है. तो अल्लाह ने ये सब निजाम बनाया है जो एक दूसरे की जरूरत है, एक दूसरे की एहतियाज है. अगर कोई है जिसको जोड़े की जरूरत नहीं है तो वो कौन है? सुबहान अल्लाजी, वो अल्लाह की जात है. अल्लाह की बाकी तमाम मखलूकात को एक दूसरे की एहतियाज है, मोहताज है. जमीन पानी की मोहताज है, पानी बारिश का मोहताज है, बारिश बादलों की मोहताज है. बादल किसके मोहताज है? वेपर्स के मोहताज है. हाँ, हवा या वेपर्स के मोहताज है. वेपर्स कंडेंसेशन कैसे डेवलप होगी? जब समुंदर या पानी चाहिए होगा. तो हर मखलूक दूसरी मखलूक के लिए एहतियाज रखती है. सिर्फ अल्लाह वो वाहिद हस्ती है, अल्लाह अल कहार, अल्लाह अल जब्बार. अल्लाह को किसी दूसरे जोड़े की जरूरत नहीं है. कुरान में आता है सूरह हदीद में, हुवल अव्वलु वल आखिरु वल जाहिरु वल बातिनु. वही सबसे अव्वल है, वही सबसे आखिर है, वही जाहिर है, वही बातिन है. तो अल्लाह ने वाजे कर दिया कि अल्लाह ने जोड़े बनाए हर तरह के, वैरायटी है. साइंस पहुंची भी है अभी उन तक, और अभी उन तक नहीं भी पहुंची. मगर प्लीज इन जोड़ों में कोई ये ना समझने लग जाए, नाउज़ुबिल्ला, कि शायद मर्द मर्द गे कपल जो है वो बन सकता है, या औरत औरत लेस्बियन कपल बन सकता है. इट्स नॉट एट ऑल लाइक दिस. जहां अल्लाह ने हाथ रख के मना कर दिया है, उस कबीरा गुनाह पर कोई हाथ नहीं रख सकता. वो मेरे बार बार इस वक्त जहन में इसलिए आ रहा है कि हम अपनी क्लास में आजकल होमोसेक्सुअलिटी, लूत अलैहिस्सलाम के किस्से पर बात कर रहे हैं, और ये आजकल वाकई हकीकतन कॉन्टेम्प्रेरी इशूज के अंदर एक बड़ा मेजर इशू बना हुआ है. इसलिए कि ये इशू होमोसेक्सुअलिटी का दुनिया की आबो हवा से पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है, और गेज और लेस्बियंस बच्चे बच्चियां आपके अपने इलाकों में, अपने स्कूल कॉलेजेस में जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं वहां मौजूद हैं. अपने बच्चों को बताएं केयरफुल रहें ऐसे लोगों से, और जरा थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहें. या तो इंसान ऐसे इंसान की इस्लाह करने के लिए उसके साथ रह सकता है तो रहे, अपना ईमान मजबूत रखते हुए. लेकिन अगर अपना ईमान इतना कमजोर है कि उसके साथ रहने से अपना ईमान शैटर्ड हो जाएगा, तो प्लीज ऐसे लोगों के साथ रहने की कोई गुंजाइश नहीं बनती. ये खुले अल्लाह के नाफरमानी के काम है, कबीरा गुनाह है ये काम. तो अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे. देर इज नो गुंजाइश अमंग द स्कॉलर्स फ्रॉम लास्ट 1450 ईयर्स होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर कभी किसी ने इसकी फेवर में बात नहीं की. तमाम फुकहा, तमाम मुफस्सरीन, तमाम सल्फ सालेहीन, तमाम सहाबा का एक इजमा रहा है, इजमाए उम्मत रहा है कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है. और आज हमारे बच्चे होमोसेक्सुअलिटी को एडवोकेट करते हुए बोलते हैं, तो क्या हो गया अगर वो होमोसेक्सुअल है? तो इसमें हमें इल्म हासिल करने की और कॉन्शियस होने की जरूरत है। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ने जिस तरह जमीन में जोड़े बनाए हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने वमिन अनफुसिहिम, अल्लाह ने तुम में भी जोड़े बनाए हैं। अभी जो तुम में जोड़े बनाए हैं, बास लोगों ने इससे ये डिराइव किया कि देखा कुरान ने तो खुद कहा है मर्द औरत भी जोड़ा है, और अल्लाह ने कहा है वमिन अनफुसिहिम, कुल्ला हा तो कहा था अल्लाह ने पहले ही, तो अल्लाह ने तो और जोड़े भी बनाए, तो औरत औरत का जोड़ा हो सकती है, कतन नहीं। जहां कुरान ने एक काम को मना फरमा दिया और जितनी जबरदस्त डिस्ट्रक्शन, तबाही, अजाब कौम लूत पर आया था, ऐसा अजाब किसी कौम पर नहीं आया। तमाम स्कॉलर्स की राय यह है, इतना सिवियर पनिशमेंट जिसमें एक तरह का अजाब नहीं था, तीन तरह के अजाब थे, तीन तरह के मुख्तलिफ अजाब स्टेप बाय स्टेप और एक के बाद एक कंजेगेटिवली एक कौम को दिए गए, इसलिए कि उनका क्राइम इतना बड़ा था। तो यहां मिन अनफुसिहिम से कोई ये कतन मुराद ना ले कि यहां ये कहा जा रहा है कि गेज और लेस्बियंस की इजाजत है और वो भी जोड़ा जो है वो एक्सेप्टेबल है इस्लाम के अंदर, बिल्कुल भी नहीं, कैटेगोरिकल डिनाई। यहां जो बात किया कि अल्लाह ने तुम में जोड़े बनाए, उसमें सबसे प्रोमिनेंट जोड़ा कौन सा है मिन अनफुसिहिम, शोहर और बीवी का, लितस्कुनू इलैहा, अल्लाह ने औरत के पास सुकून को रखा है, अल्लाह ने मर्द का जोड़ा औरत और औरत का जोड़ा मर्द को बनाया है ताकि वो दोनों एक दूसरे से सुकून हासिल करें। इसके अलावा कौन से जौज हैं जो इंसान के अंदर हैं, वो इंसान की स्पिरिचुअल रियलिटीज हैं। देखें, आपके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्ट्रोडिक्टिंग क्वालिटीज हैं, एक अंदर से आवाज आती है आप सब कुछ कर सकती हैं, जमीर की आवाज आती है, फिर एक और आवाज आती है बट यू हैव टू होल्ड योरसेल्फ। कभी कभी ऐसा होता है ना, बाज़ दफ़ा शैतान ख्याल डालता है, यंग बच्चे आजकल इतना टेम्पटेशन है, इतना माहौल है, आप स्कूल गए हुए हैं, फ्रेंड्स का प्लान बन जाता है कहीं बाहर हैंग आउट करने का, तो आपका बहुत दिल चाहता है, आप कहती हैं चलो मैं भी चलती हूँ, गाड़ी आएगी 3 बजे, मैं 3 बजे तक वापस आ जाऊंगी, अम्मी को थोड़ी पता चलेगा। एक ख्याल अंदर से, ये अंदर से आपकी कॉन्ट्रोडिक्टिंग क्वालिटीज आपके अंदर से आती है, एक आवाज आती है हाँ हाँ आ जाना 3 बजे तक, गाड़ी तो 3 बजे आएगी, अम्मी को पता भी नहीं चलेगा, फिर फौरन एक अंदर से जो अगला ख्याल आता है नहीं नहीं अम्मी ने, या तो क्या हो गया, अल्लाह तो देख रहा है, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगी, झूठ थोड़ी बोलते हैं, झूठ बोलने वाले के ऊपर तो अल्लाह की लानत है। ये जो कॉन्ट्रोडिक्टिंग आपके अंदर, आपके नफ्स के अंदर अल्लाह ने क्वालिटीज रखी हैं, ये भी आपका जौज है। कुरान में आता है फअल्हमहा फुजूरहा व तक्वाहा, नफ्स की नाफरमानी और उसका तकवा अल्लाह ने कपल्ड किया है, और जो अपने नफ्स की नाफरमानी को हार्नेस करके अपने तकवा को बढ़ा ले, उसी विल पावर के इम्तहान में वो कामयाब होने वाला मोमिन है। यही चीज अल्लाह ने यहां मेंशन की है कि अल्लाह ने हर चीज की अर्ज रख दी इंसान में और फिर उससे कह दिया कि देखो इसमें बैलेंस मेंटेन करना। अल्लाह ने आपके अंदर एंथुजियास्टिक होने की क्वालिटी रखी है और फिर साथ साथ अल्लाह ने आपको लिथार्जिक होने की तरफ भी जहन दिया है। बाज दफा इंसान कहता है मैं ये भी करूंगी, मैं ये भी करूंगी, मैं ये भी करूंगी, इंसान हिम्मत करता है ना, रमजान के रोजे आ रहे हैं, अभी फिर सुनने में आ रहा है हीट वेव आ रही है आगे, अल्लाह रहम फरमाए अपना सब पर। सो आपके एक अंदर से अर्ज आती है, फिर क्या हो गया हीट वेव, मैं रोजा भी रखूंगी, मैं तरावी पढ़ने भी जाऊंगी, मैं अपनी कुरान क्लास में भी जाऊंगी, मैं घर आकर कुरान भी पढ़ूंगी, एक अंदर से एंथुजियास्टिक आवाज आती है, दूसरी आवाज आती है इतनी गर्मी, मैं नमाज पढ़ूंगी जोहर की, मैं अब एक हफ्ते क्लास में नहीं जाऊंगी, मैं सो जाऊंगी। सो ये दोनों आवाजें साइमल्टेनियसली आती हैं आपको, ये अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर वैरायटी रखी है। तो जैसे अल्लाह ने इंसान को इमोशंस दिए हैं, एक और आपको इंसान का एक कपल, एक जोड़ा मिलता है, जैसे इंसान में इमोशंस हैं, ईमान का जज्बा है, अल्लाह की खशियत है, दीज आर ऑल इमोशंस, आपका तकवा इज एन इमोशन, इसका एक और कॉम्प्लीमेंट्री एस्पेक्ट पेयर की शक्ल में आपकी इंटेलेक्ट है, रीजनिंग पावर है, आपका ब्रेन है, आपकी खशियत आपसे कहती है कि 2 रकत और एक्स्ट्रा पढ़ लो, आपका जहन कहता है इतनी थकी हुई हो, इतने डार्क सर्कल आंखों के नीचे आ जाएंगे, चलो पहले अपनी नींद पूरी करो। दीज आर द कॉन्ट्राडिक्टिंग क्वालिटीज विद इन द ह्यूमन बींग, आपके नफ्स के अंदर अल्लाह ने रखी है। तो जो अल्लाह ने कहा है वह मिन अनफुसिहिम, उसका इशारा इसी की तरफ है, अल्लाह ने इन्हीं दो के बैलेंस को कहा है। सूरत इन्फितार आयत नंबर 7 में अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, अल्लाह ने इंसान को इन कॉन्ट्राडिक्टिंग क्वालिटीज के साथ पैदा किया है, लेकिन फिर अल्लाह चाहता है कि बंदा अदल मेंटेन करे। अदल असल में बना किस है, अदल बना है इदल से, आइन की जेर के साथ, जो फीमेल कैमल होती है, शी कैमल, उसकी कमर मेल कैमल के मुकाबले में पतली होती है. सो अरब क्या करते थे कि जो शी कैमल होती थी, जब वो उस पर वजन डालते थे, पतली कमर होती थी तो वजन एक तरफ गिर जाता था, उसके स्टेबल उसके ऊपर नहीं रहता था. तो अरब का अंदाज ये था, एक रूटीन ये थी कि जब उनको शी कैमल के ऊपर वजन डालना होता था तो वो दो वजन एक साथ एक ही वेट के लेते थे, बीच में रस्सी डालते थे और उसको ऊंटने के ऊपर रख दिया करते थे. वो तो हैंगिंग पोजीशन में दो उसके वेट जो थे वो बराबर के पड़े रहते थे. अगर एक वेट भी ज्यादा होता था तो एक तरफ गिर जाया करता था. इसको कहते थे इदल, ऊंटने के ऊपर वजन को मेंटेन करना. इसी से अदल बना है. अल्लाह ने मुझे और आपको ना सिर्फ माशरे में अदल के लिए पैदा किया, ना सिर्फ सोशल जस्टिस को माशरे के इज्तिमाई लेवल पर मेंटेन करने का हुक्म दिया, अल्लाह ने विद इन आर सेल्फ, विद इन आर इंटरनल बींग्स, इन आर स्पिरिचुअल रियालिटीज, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको इस तकवा और फजूर का अदल मेंटेन करने को कहा है. नफ्स हुक्म देगा नाफरमानी का, तुम्हारा काम क्या है, तकवा के रास्ते पर आ जाओ. और जितना तुम तकवा के रास्ते पर आओगे, याद रखना तुम्हारा फजूर कमजोर पड़ता जाएगा और फिर तुम्हारे अंदर शैतान के जो हुमाजात हैं, शैतान हुमाजात करता है ना, विस्पर, वो विस्पर जो आपको पीछे से आता है, हुमाजात ऐसे विस्पर जो पीछे से आते हैं, जितना आपका तकवा मजबूत होगा, जितना आप अपने इस एस्पेक्ट को मजबूत करेंगी, उतना आप फजूर के रास्ते से बचती चली जाएंगी. तो अल्लाह ताला ने एक जोड़ा ये भी रखा है, अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान की गहराई को समझने के लिए वक्त निकालने की तौफीक अता फरमाए. अल्लाह ताला हमारी औलादों को इस कुरान की वो खूबसूरती दिखाए कि ये आगे बढ़कर दुनिया को कुरान के इल्म से रोशनास कराएं. अल्लाह ताला हम सब के बच्चों की हिफाजत फरमाए. अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमाए. खैर वाफियत से आगे का रमज़ान इबादत के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए. अल्लाह तमाम लोगों की मुश्किलात दूर फरमाए. अल्लाह जो परेशानी और मुश्किलात में है उनके मुश्किलात दूर फरमा दीजिए. जो आगे गर्मी आ रही है, अल्लाह तमाम लोगों के जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनकी हिफाजत फरमाइए. और अल्लाह तमाम मुसलमान उम्मत पर अपना रहम नाजिल फरमाइए. बारकल्लाहु ली वलकुम फिल कुरान अल हकीम व नफअनी व इयाकुम बि आयाती व ذکر अल हकीम. सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. जज़ाकल्लाहु खैरन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.